ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सभा द्वारा अभौतिक सांस्कृतिक संपदा संरक्षण विधेयक 2081 हुआ पारित। रासोपा के सभापति रवि लामिछाने सहित तीन व्यक्तियों के ऊपर से संगठित अपराध और संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी केस वापस लेने का कास्की जिला अदालत ने किया आदेश। मोहतरी की मनरा सिसवा नगरपालिका में तीन बच्चियों की डूबने से हुई मौत और हरमुज के संबंध में अमेरिका ईरान के बीच समझौता अभी भी अनिश्चित है, यूएई का दावा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में अभौतिक सांस्कृतिक संपदा संरक्षण विधेयक 2081 पारित किया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खटकराज पोडेल ने कहा कि यह विधेयक समुदाय स्तर पर प्रचलित पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण तथा उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के अधिकार को सुनिश्चित करेगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान सांसदों ने कहा कि नेपाल सरकार 2010 में ही अभौतिक सांस्कृतिक महासंधि की पक्ष राष्ट्र बन चुकी है, इसलिए उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए यह विधेयक आवश्यक है। बैठक में वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 के संबंध में प्रतिनिधि सभा से प्राप्त संदेश भी प्रस्तुत किया गया। इससे पहले राष्ट्रीय सभा की बैठक में सांसदों ने बाजार में कैंसर के उपचार में प्रयोग होने वाली दवाओं की कमी पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और आवश्यक दवाओं की कमी न होने देने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। उन्होंने राष्ट्रीय सभा में रिक्त दो सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति, होल्डिंग सेंटर में मौजूद विस्थापित सुकुम्बासियों की समस्याओं के समाधान, दात्री निकायों से प्राप्त ऋण और सहायता के उत्पादक उपयोग, दैलक में पेट्रोलियम अन्वेषण के दूसरे चरण की शुरुआत और दलित व विपन्न समुदाय के लिए पर्याप्त बजट की मांग की। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आगामी जेठ 13 गते बुधवार दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव ने आज मध्य प्रदेश सभा से विश्वासमत प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश सभा की बैठक में मुख्यमंत्री यादव के पक्ष में 62 प्रदेश सभा सदस्यों ने विश्वासमत दिया। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वासमत प्रस्ताव के विरोध में 36 सदस्यों ने मतदान किया, जिसकी घोषणा प्रदेश सभा के सभामुख राम आशीष यादव ने की। आज की बैठक में कुल 100 की संख्या में प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित थे। नेपाली कांग्रेस के प्रदेश सभापति भी रहे मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव को नेपाली कांग्रेस की 22, नेकपा एमाले के 24, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के 15 और नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल के 1 सदस्य ने समर्थन देकर विश्वासमत दिया। कास्की जिला अदालत ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने सहित गीतेन्द्र बाबू राय जीबी और छविलाल जोशी के खिलाफ संगठित अपराध और संपत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामला वापस लेने का आदेश दिया है। जिला न्यायाधीश हिमलाल बेलवासे की इजलास ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सहकारी ठगी से संबंधित आरोप जारी रहेंगे, लेकिन अन्य आरोप अब कायम नहीं रहेंगे। इस बारे में कास्की जिला अदालत के रजिस्ट्रार राजन खनाल ने जानकारी दी। उनके अनुसार कास्की जिला सरकारी वकील कार्यालय द्वारा दायर आवेदन के आधार पर अदालत ने यह आदेश दिया कि रवि लामिछाने सहित अन्य प्रतिवादियों पर लगाए गए संगठित अपराध, संपत्ति शुद्धिकरण तथा नेपाल राष्ट्र बैंक से संबंधित अपराधों के आरोप अब नहीं चलेंगे और इन्हें संशोधित किया गया है। संविधान संशोधन बहस पत्र तैयार करने वाले कार्यदल 2083 के सचिवालय ने आम नागरिकों से राय और सुझाव मांगे हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया में सभी नेपाली नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 7 दिनों के भीतर लिखित सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के राजनीतिक सलाहकार असीम शाह संयोजक रहे इस कार्यदल ने विभिन्न राजनीतिक दलों से लिखित सुझाव लेकर पहले ही चर्चा कर ली है। कार्यदल ने बताया कि विभिन्न समय पर संविधानविद, कानूनविद, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व प्रशासक, पूर्व कूटनीतिज्ञ, पत्रकार और राजनीतिक व्यक्तित्वों के साथ भी चर्चा कर सुझाव एकत्र किए जा चुके हैं। सांसदों ने जेल तथा पुलिस हिरासत की स्थिति में सुधार, कैदियों के साथ होने वाले भेदभाव, हिरासत में होने वाली मौतों और मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों पर गंभीरता दिखाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति की आज की बैठक में सांसदों ने कहा कि देश के अधिकांश जेलों में क्षमता से कई गुना अधिक, लगभग 5 गुना तक कैदी रखे जा रहे हैं। सांसदों ने कहा कि क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आर्थिक स्थिति और हैसियत के आधार पर हिरासत में भेदभाव किया जाता है। सामान्य कैदियों को सीमित जगह में सोना पड़ता है और कई मामलों में हिरासत और जेल मृत्युस्थल बनते जा रहे हैं। बैठक में उठाए गए सवालों के जवाब में आईजीपी दान बहादुर कार्की ने कहा कि जांच प्रणाली को पारंपरिक से आधुनिक बनाना आवश्यक है। उन्होंने हिरासत की दयनीय स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा कि वेंटिलेशन हटाने और शिकायत प्रणाली को तकनीक आधारित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में कारागार व्यवस्था विभाग ने जानकारी दी कि भाद्र 23 और 24 गते के जेंजी विद्रोह के दौरान फरार हुए लगभग 14,500 कैदियों में से अभी भी लगभग 4,000 कैदी फरार हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लमसाल ने कहा है कि निर्माण क्षेत्र में देखी जा रही समस्याओं को हल करने के लिए सरकार तैयार है, इसलिए निर्माण व्यवसायियों को निश्चिंत होकर काम करना चाहिए। प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत पूर्वाधार विकास समिति द्वारा आज सिंह दरबार में आयोजित मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण पर पड़े प्रभावों पर चर्चा के दौरान मंत्री लमसाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री की कीमतों का समायोजन कानून और नियमों के अनुसार किया जाएगा और सरकार निर्माण व्यवसायियों की समस्याओं को समझती है। मंत्री लमसाल ने निर्माण व्यवसायियों से काम में देरी न करने और गुणवत्ता से कोई समझौता न करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि खरीद समझौते के मानकों के अनुसार कार्य समय पर पूरा किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि संचार माध्यमों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पैकेज लाने की तैयारी की जा रही है। प्रतिनिधि सभा की शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक में सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमिल सिन्हा ने कहा कि जैसे सरकार को जवाबदेह होना चाहिए वैसे ही मीडिया को भी स्वयं जवाबदेह होना जरूरी है। उन्होंने डिजिटल नेपाल अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न निकायों के पुनर्गठन के लिए विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। बैठक में मंत्री तिमिल सिन्हा ने यह भी जानकारी दी कि नेपाल अपने स्वयं के सैटेलाइट उपग्रह के लिए भी प्रयास कर रहा है। सरकार ने बकर ईद उल अजहा के अवसर पर जेठ 14 गते सार्वजनिक छुट्टी देने का निर्णय किया है। गृह मंत्रालय ने आज एक विज्ञप्ति जारी करते हुए मुस्लिम आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया कि विक्रम संवत 2083 साल जेठ 14 गते यानी गुरुवार को बकर ईद का पर्व पड़ता है, इसलिए उस दिन सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि 2082 फागुन 18 गते प्रकाशित नेपाल राजपत्र के अनुसार बकर ईद के दिन सार्वजनिक छुट्टी देने की व्यवस्था है। मोहतरी की मनरा सिसवा नगरपालिका वार्ड नंबर 7 सरपल्लो में दो सगी बहनों सहित 3 बालिकाओं की नदी में डूबकर मृत्यु हो गई है। मृतकों में स्थानीय वीरेंद्र भंडारी की 13 वर्षीय बेटी स्नेहा भंडारी, 6 वर्षीय शिवानी भंडारी और वहीं के रहने वाले अजीज नताफ की बेटी अफसाना खातून शामिल हैं। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार सरपल्लो स्थित मुनीलाल माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 6 में पढ़ने वाले स्नेहा और अफसाना अंकुशी और जंघा नदी के संगम स्थल पर नहाने गई थी। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल और नेपाल यात्रा पर आई ब्रिटेन की मंत्री सीमा मल्होत्रा के बीच बैठक हुई है। सिंह दरबार स्थित शिक्षा मंत्रालय में हुई इस बैठक में नेपाल और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से चले आ रहे कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने और शिक्षा और खेलकूद क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग विस्तार करने पर चर्चा हुई। मंत्रालय के अनुसार समानता और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिखने वाली ब्रिटिश मंत्री मल्होत्रा 3 दिवसीय दौरे पर आज सुबह नेपाल पहुंची हैं। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए चल रहे साझेदारी कार्यक्रमों और भविष्य में संभावित सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। साथ ही नेपाल सरकार द्वारा 7 प्रदेशों में शुरू करने की योजना वाले ऑटिज्म स्कूल की अवधारणा और उसके क्रियान्वयन पर भी महत्वपूर्ण परामर्श हुआ। सरकार ने संगीत रॉयल्टी, कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा से जुड़े विवाद शिकायतों और प्रणालीगत समस्याओं के अध्ययन के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के ध्यानाकर्षण के बाद लक्ष्मण बिडारी शेष की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की समिति गठन की है। मंत्रालय स्तरीय निर्णय के अनुसार ये समिति संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पोडल के सचिवालय के अनुसार गठित की गई है। समिति में सूचना तथा संचार मंत्रालय के अंतर्गत सूचना तथा प्रसारण विभाग के प्रमुख, नेपाल कॉपीराइट रजिस्ट्रार कार्यालय की रजिस्ट्रार सविता कार्की और संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत पुरातत्व तथा संपदा शाखा की प्रमुख सुभद्रा भट्टराय सदस्य के रूप में शामिल हैं। समिति की सदस्य सचिव के रूप में संस्कृति शाखा की उप सचिव निर्मला न्योपाने को नियुक्त किया गया है। मंत्रालय ने समिति को गठन की तारीख से 10 दिनों के भीतर आवश्यक सिफारिशों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्यादेश दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के समझौते तक पहुंचने की संभावना अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा। यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के समझौते तक पहुंचने की केवल 50-50 संभावना है। उन्होंने तेहरान से आग्रह किया कि वो मध्य पूर्व युद्ध के कमजोर युद्ध विराम के दौरान बातचीत को बार बार रोकने और फिर शुरू करने और इसमें अत्यधिक सौदेबाजी जैसे काम न करें। ईरानी अधिकारियों ने वर्षों में कई अवसर खो दिए हैं क्योंकि वे अपनी शक्ति का अधिक आकलन करने की प्रवृत्ति रखते हैं, गरगाश ने प्राग में ग्लोबसेक फोरम को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे इस बार ऐसा नहीं करेंगे। गरगाश ने बताया कि अमेरिकी सैन्य सुविधाओं वाले तेल समृद्ध यूएई पर 28 फरवरी से शुरू हुए 40 दिनों के युद्ध के दौरान लगभग 3,300 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय सभा द्वारा अभौतिक सांस्कृतिक संपदा संरक्षण विधेयक 2081 हुआ पारित। रासोपा के सभापति रवि लामिछाने सहित 3 व्यक्तियों के ऊपर से संगठित अपराध और संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी केस वापस लेने का कास्किस जिला अदालत ने किया आदेश। मोहतरी की मनरा सिसवा नगर पालिका में 3 बच्चियों की डूबने से हुई मौत और हॉर्मुज के संबंध में अमेरिका ईरान के बीच समझौता अभी भी अनिश्चित है, यूएई का दावा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।